حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک اور تاریخی واقعہ جس کا عنوان ہے عظمت رسول اور تعمیر مدینہ. آئیے سامعین, اس واقعے کو لکھا ہے ہندوستان کے عظیم شاعر جناب فیض بدایونی صاحب نے اور آوازیں دی ہیں دلبر میراج دوبو درابنگر بدایونی, اور یہ پیشکش ہے شری کیسٹ اسلامک اور سنجے اگروال جی کی. اس کا میوزک دیا ہے راجو خان صاحب نے اور سلاکار مسرت علی جی. لیجئے سامعین, بڑا ہی حسین واقعہ پیش کر رہے ہیں عظمت رسول اور تعمیر مدینہ.
محمد مصطفیٰ کا مرتبہ نبیوں میں اعلیٰ ہے,
محمد مصطفیٰ کا مرتبہ نبیوں میں اعلیٰ ہے,
محمد مصطفیٰ کا مرتبہ نبیوں میں اعلیٰ ہے. زمین سے آسمان تک فیض ان کا بول بالا ہے,
زمین سے آسمان تک فیض ان کا بول بالا ہے, زمین سے آسمان تک فیض ان کا بول بالا ہے.
محمد مصطفیٰ کا مرتبہ نبیوں میں اعلیٰ ہے,
محمد مصطفیٰ کا مرتبہ نبیوں میں اعلیٰ ہے,
محمد مصطفیٰ کا مرتبہ نبیوں میں اعلیٰ ہے.
زمین سے آسمان تک فیض ان کا بول بالا ہے, زمین سے آسمان تک فیض ان کا بول بالا ہے, زمین سے آسمان تک فیض ان کا بول بالا ہے.
خوش نصیبی ہے جو ہم ہیں ان کی امت میں, پڑا کرتے درود رات دن ہم ان کی چاہت میں, محمد مصطفیٰ کے صدقے میں قرآن آیا ہے, جیے کیسے بشر سارے یہ سب رستہ بتایا ہے. ناتے جو میرے آقا ازاں مسجد میں نہ ہوتی, اندھیرا ہی یہاں رہتا کہیں نہ روشنی ہوتی, نہ وہ معراج کو جاتے نمازیں کون پڑھتا, پھر جھکاتا کون پیشانی عبادت کون کرتا, پھر خدا کیسے ملے گا راستہ یہ کون دکھلاتا, بدی کیا اور کیا نیکی جہاں کو کون بتلاتا. رسول پاک کا دنیا میں پہلے نور آیا تھا, عجب رونق زمین پر تھی جہاں یہ جگمگایا تھا. ہزاروں سال پہلے عالموں کو مل گئی اطلاع, زمین پر آنے والے ہیں یہاں پیارے رسول اللہ.
اسی تصدیق کے باعث تمہیں قصہ سناتے ہیں,
اسی تصدیق
محمد مصطفیٰ کی شان کیا تم کو بتاتے ہیں,
محمد مصطفیٰ کی شان کیا تم کو بتاتے ہیں, محمد مصطفیٰ کی شان کیا تم کو بتاتے ہیں.
ولادت تب تلک آقا نے نہ دنیا میں پائی تھی, खबर आमद की उनकी आलिमों ने पहले पाई थी। लिखा है बादशाह तब यहाँ तू बाहु मायरी था, यमन की सल्तनत पर वो हुकूमत अपनी करता था। बड़ी ही शान व शौकत से वो अपनी जिंदगी जीता, बड़ा इंसाफ वाला था किसी पर जुल्म ना करता। गया एक मर्तबा दौरे पे वो दिल में लिए हसरत, उसे मालूम करनी थी यहाँ आवाम की हालत। हजारों साथ थे आलिम हजारों लाखों प्यादे थे, हकीमी जानने वाले भी उनमें अच्छे खासे थे। लिखा है लाख से ज्यादा थे फौजी साथ घोड़ों पर, चले जाते थे अपनी शान में वो अपने रास्ते पर। जहां रुक जाता था लश्कर वहीं हो जाती मेहमानी, किया करते थे बढ़ चढ़ कर यहाँ सब उनकी अगवानी।
शहर दर शहर उनका काफिला बढ़ता ही जाता था,
शहर दर शहर उनका काफिला बढ़ता ही जाता था,
शहर दर शहर उनका काफिला बढ़ता ही जाता था। जहाँ तक सल्तनत उनकी वहाँ तक चलता जाता था,
जहाँ तक सल्तनत उनकी वहाँ तक चलता जाता था, जहाँ तक सल्तनत उनकी वहाँ तक चलता जाता था।
बढ़ता ही जाता है और ये कहां जाकर अब ठहरेगा, आगे का वाकया समाप्त करें, कहना है क्या।
सफर करते हुए वो काफिला आया था चर्चा में, इसी हालत में वो पहुंचे सभी जाकर के मक्का में। शहर भर से कोई भी उनसे मिलने को नहीं आया, हालत देख कर राजा को गुस्सा खूब उठा आया। ये मंजर देख कर दिल में हुई थी उसके हैरानी, वजीरे सल्तनत से क्या वजह है उसने ये जानी। कहा उसने ये राजा से यहाँ एक घर है बैतुल्ला, हिफाजत जिसकी फरमाता हमेशा खुद से ही अल्लाह। उसी घर की यहाँ तासीम सारा मक्का करता है, वहीं जाकर के हर कोई खुदा को सजदा करता है। जियारत के लिए अक्सर यहाँ पर लोग आते हैं, मुसीबत से घिरे हैं जो यहाँ सब फैज पाते हैं। यहाँ के जो है बाशिंदे उन्हें दिल से अकीदत है, दरे बैतुल्ला से उनको बड़ी सच्ची मोहब्बत है।
ये सुनकर बादशाह वक्त को फिर आ गया गुस्सा,
ये सुनकर बादशाह वक्त को फिर आ गया गुस्सा,
ये सुनकर बादशाह वक्त को फिर आ गया गुस्सा। वजीरे सल्तनत को तैश में आकर के ये बोला,
वजीरे सल्तनत को तैश में आकर के ये बोला, वजीरे सल्तनत को तैश में आकर के ये बोला।
سامعین یہ قافلہ مکہ شریف میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جب راجہ پہنچتا ہے تو وہاں کے لوگ اسے دیکھنے نہیں آتے. اسی بات پر راجہ کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور اپنے وزیر کو کیا حکم دیتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے خلاصہ ہے.
یہاں کے جو ہے باشندے انہیں اب قتل کروا دو, عمارت جو ہے بیت اللہ اسے بھی آج گروا دو. کہا راجہ نے میں سارا شہر ویران کر دوں گا, بچے گا کوئی نہ زندہ یہاں شمشان کر دوں گا. یہ کہتے ہی خدا کا ہو گیا اس پہ قہر جاری, تڑپنے وہ لگا ایک دم لگی تھی ایسی بیماری, جسم سے پھوٹ کر اس کے لہو اور پیپ بہتا تھا, بہت بدبو تھی اس میں چین نہ اب اس کو ملتا تھا. حکیموں نے ہنر اپنا بہت ہی اس پہ آزمایا, مگر اس کو دواؤں سے نہیں آرام تھا آیا. بہت بے چین کھا راجہ نہ حالت کچھ سنبھلتی تھی, بدن سے بادشاہ کے اب بڑی بدبو نکلتی تھی. پریشان تھا شہنشاہ نہ کوئی بھی پاس آتا تھا, جو بدبو سونگ لیتا وہ وہاں سے بھاگ جاتا تھا.
ہوئی جو شام تو آئے تھے عالم تھے ربانی,
ہوئی جو شام تو آئے تھے عالم تھے ربانی,
ہوئی جو شام تو آئے تھے عالم تھے ربانی.
نبض دیکھی جو راجہ کی ہوئی ان کو پریشانی,
نبض دیکھی جو راجہ کی ہوئی ان کو پریشانی, نبض دیکھی جو راجہ کی ہوئی ان کو پریشانی.
راجہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کی شان پہ گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں کے لوگوں کو قتل کروا دوں گا, اور جو عمارت بیت اللہ ہے جس کی سب عزت کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں آج میں اسے بھی گروا دوں گا. لیکن اتنا کہنا ہوا اور اللہ کا حکم ہوتا ہے, اس راجہ کو ایک بیماری لگ جاتی ہے اور وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ حکیم بھی جواب دے دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن وہ ٹھیک کیسے ہوگا آگے کا واقعہ سماعت کریں.
کہا عالم نے راجہ سے مرض یہ آسمانی ہے, بچانا اب بڑی مشکل تمہاری زندگانی ہے, کرو توبہ خدا سے ہو گئی ہے تم سے گستاخی, ملے گی پھر سے صحت دور کر دو رب کی ناراضی. کری توبہ جو راجہ نے تو اس کو مل گئی صحت, خدا راضی ہوا اس سے بنی بگڑی ہوئی قسمت. ہوا خوش بادشاہ تو اشرفی بھی اس نے لٹوائی, سبھی مکہ کے باشندوں کو پوشاکیں بھی بٹوائی, در بیت اللہ میں جا کر کے دامن اس نے پھیلایا, قلعہ ریشمی جا کر کے بیت اللہ پہ چڑھوایا, کری معافی طلب اس نے وہاں خدا میں کعبہ سے, مدینے کی طرف سب چل دیے تھے यहाँ जब काफिला पहुँचा था जो तू बाहुमारी का, तो जाके आलिमों ने कंकरी और मिट्टी को सूंघा।
बड़ी कुतुबे समावी में अलामत वो नजर आई,
बड़ी कुतुबे समावी में अलामत वो नजर आई,
बड़ी कुतुबे समावी में अलामत वो नजर आई। यहाँ आएंगे आका उनको ये सूरत नजर आई,
यहाँ आएंगे आका उनको ये सूरत नजर आई,
राजा के साथ में जितने आलिम थे उसमें एक बड़े आलिम साहब ने राजा को ये बताया कि ये बीमारी आसमानी है, ये ऐसे ठीक नहीं होगी, तुमसे कोई गुस्ताखी हो गई है अल्लाह की शान में, तो तुम माफी तलब कर लो। तो राजा ने जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर माफी मांगी तो अल्लाह ने उसको माफ कर दिया और वो ठीक हो गया, और उसने वहाँ पर मक्का शहर में अशर्फियाँ लुटवाई और सबको पोशाकें भी बंटवाई। और उसके बाद ये काफिला एक जंगल में पहुंच जाता है और जो आलिम राजा के साथ में थे उन्होंने कंकरी और मिट्टी को सूंघा और उन्होंने इस बात से अंदाजा लगा लिया कि यहाँ जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है मुलाहिज़ा।
कहा था आलिमों ने राजा से अब हम न जाएंगे, हमें उम्मीद है आका यहाँ एक रोज आएंगे, अगर जीते जी कर पाए नहीं दीदार आका का तो मर कर भी मयस्सर होगा हमको प्यार आका का, सवारी जब भी आका की यहाँ हिजरत को आएगी तो उड़ के जूतियों की खाक तो कब्रों पे आएगी, निजात हमको मिलेगी आका तो रहमत का दरिया है, वो है महबूब अल्लाह के वही बख्शिश का जरिया है। ये सुनकर काफिला राजा ने जंगल में ही ठहराया, उसी मिट्टी से राजा ने शहर तामीर करवाया, बने थे 400 घर 400 आलिम की खातिर वो, वहीं पर एक घर ऐसा बना जिसकी थी मंजिल दो, बड़ा ही खूबसूरत था बहुत वो घर चमकता था, अजब खुशबू थी उसकी दूर से ही वो महकता था।
हुआ तामीर जब घर तो यही राजा ने वसीयत की,
हुआ तामीर जब घर तो यही राजा ने वसीयत की,
हुआ तामीर जब घर तो यही राजा ने वसीयत की,
तमन्ना है बहुत हमको रसूल अल्लाह की ज़ियारत की,
तमन्ना है बहुत हमको रसूल अल्लाह की ज़ियारत की, तमन्ना है बहुत हमको रसूल अल्लाह की ज़ियारत की।
जो आलिम थे राजा के साथ में वो राजा को बता देते हैं कि यहाँ की मिट्टी से ऐसी खुशबू आ रही है कि यहाँ हुजूर तशरीफ लाएंगे, तो वो राजा 400 आलिमों के लिए 400 ही मकान बनवा देता है। और मदीने की सरजमी पर जहाँ जंगल था वहाँ वो मदीना शहर बसा देता है। 400 घर के साथ साथ एक घर ऐसा भी बनवा देता है जो दो मंजिला था, बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही महकता था, चमकता था। उसके बाद राजा एक वसीयत लिख देता है, यानी एक खत लिखता है, और वो खत किसके हाथ में जाता है आगे का वाकया मुलाहिज़ा करें।
करे मक्का से हिजरत को इधर से जब भी वो गुजरे, हुआ तामीर है ये घर उसी में आके वो ठहरे। लिखा था एक खत उसने रसूल अल्लाह की खिदमत में कि मैं हूँ या रसूल अल्लाह तुम्हारी पहली उम्मत में, नबी तुम आखरी हो, तुम पे मैं कुर्बान जाता हूँ, खुदा है एक ही सबका मैं ये ईमान लाता हूँ, अगर मर जाऊँ आका तो इनायत इतनी कर देना, नबी तुम रोज़े महशर में शफ़ात मेरी कर देना। ये खत उसने दिया आलिम बड़े थे जो भी रब्बानी, कहा उनसे के करना तुम यही हम पे मेहरबानी, रसूल अल्लाह की खिदमत में मेरा खत पेश करना है, वो जब तक आए ना तब तक इसे महफूज रखना है। हिदायत दे के राजा ने उन्हें दौलत अता की थी, खुदा तुमको बसाए उसने ये दिल से दुआ की थी।
लिए दीदार की हसरत मदीने से हुआ रुखसत,
दीदार की हसरत मदीने से हुआ रुखसत,
लिए दीदार की हसरत मदीने से हुआ रुखसत, रखा था जान से ज्यादा यहाँ मैं महफूज उसका खत,
रखा था जान से ज्यादा यहाँ महफूज उसका खत, रखा था जान से ज्यादा यहाँ महफूज उसका खत।
सामईन हजरात, तकरीबन सरकार मदीना की पैदाइश से 1000 साल पहले ये राजा एक खत लिखता है और उस खत में ये वसीयत करता है कि जब भी सरकार मदीना यहाँ तशरीफ लाए तो उसी मकान में ठहरे जो मैंने मकान उनके लिए बनवाया है। आगे ये खत किसके हाथ में जाता है सुनिएगा।
के नस्लन वादा नस्लन खत यहाँ महफूज वो पाया, वो मुद्दत बाद अबू अय्यूब की तहबील में आया, अबू अय्यूब की रहते गुलामी में अबू लैला, उन्हीं के पास था वो खत हुआ बिल्कुल नहीं मेला। इसी दौरान तेजी से बड़ी थी खूब आबादी, यही वो वक्त था जब शान चमकी थी मदीने की, नबी मक्का से हिजरत पर मदीने को जो आए थे, मदीने वालों ने खुशियों से अपने घर सजाए थे, सभी ये चाहते थे आका उनके घर पे आ जाए, मुकद्दर जाग जाए वो अगर तशरीफ ले आए। ये आलम था मदीने का, वहां झगड़े की नौबत थी, नबी से देखिएगा इस कदर सबको मोहब्बत थी, नबी ने ये कहा कि मैं किसी का दिल न तोड़ूंगा, रुकेगी ऊटनी मेरी वहीं पर ही मैं ठहरूंगा।
रुकी थी ऊटनी जाकर मंजिला घरों में
से बनवाया था दिल से कभी तू बाहुमारी ने
इसे बनवाया था दिल से कभी तू बाहुमारी ने इसे बनवाया था दिल से कभी तू बाहुमारी ने
सरकारे मदीना हिजरत कर कर मदीना तशरीफ ला रहे थे तो सब मदीने वालों ने अपने घरों को सजा लिया और सबका यही अरमान था कि सरकारे मदीना हमारे घर में तशरीफ ले आए। लेकिन सरकारे मदीना को पहले ही रोशन था और उन्होंने कहा कि मैं किसी का दिल न तोड़ूंगा, जहां मेरी ऊँटनी रुकेगी मैं वहीं ठहर जाऊंगा। और वो ऊँटनी सरकारे मदीना की उसी मकान के पास ठहरती है जो राजा ने सरकारे मदीना की मोहब्बत में दो मंजिला मकान बनवाया था। उसके बाद सरकारे मदीना जो वो खत राजा दे गया था वो किससे मांगते हैं और ये आखिरी बन मैं आप तलक पहुंचा रहा हूँ सामईन मुलाहिज़ा करें।
रसूल अल्लाह के जब सामने आए अबू लैला बताए बिन ही बोले थे यही प्यारे रसूल अल्लाह। अबू लैला तुम्हारे पास जो है खत बुला कर दो, अधूरा फर्ज है सदियों से अब पूरा उसे कर दो। अबू लैला गए थे दौड़ के उस खत को ले आए, रसूल पाक को देकर अबू लैला ये फरमाए, रसूल अल्लाह मेरे अजदाद के हक में दुआ करना, संभाला खत है सदियों तक हमें इसका अजर देना। रसूल अल्लाह ने जब खत पढ़ा तो बाहुमारी का उन्हें अच्छा लगा पैगाम उसकी जानसारी का, कहा था शुक्रिया तू बाहुमारी जान चाहत हो, खुदा बख्शे तुम्हें तुम तो हमारी पहली उम्मत हो। लिखा ये वाकया है दोस्तों इब्ने असाकर में, हजार एक साल बाद आया ये खत आका की खिदमत में।
खुदा वाहिद अकेला फैजना माबूद है कोई,
खुदा वाहिद अकेला फैजना माबूद है कोई,
खुदा वाहिद अकेला फैजना माबूद है कोई, मोहम्मद की तरह रब को नहीं महबूब है कोई,
मोहम्मद की तरह रब को नहीं महबूब है कोई, मोहम्मद की तरह रब को नहीं महबूब है कोई, मोहम्मद की तरह रब को नहीं महबूब है कोई।